मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयानी पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग यहां अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में सुख दुख पाते हैं। हमने यहां अगर अच्छा शरीर पाया है, अगर हमने यहां पर मधुर वाणी पाई है, यहां इस संसार में यदि हमें यश और ख्याति का अनुभव होता है, तो वो सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। और यदि यहां हमारे जीवन में शरीर जनित रोग जनित पीड़ाएं हैं, यदि हमें हमारी वाणी स्वयं कठोर और कर्कश जान पड़ती है, यदि हमें हमारा जो स्थान जिसमें हमारा जन्म हुआ है वो ठीक नहीं मालूम पड़ता, अगर इस तरह की बातें हमारे जीवन में हुई हैं, तो उसके लिए भी हमारे कर्म जो हमने स्वयं किए हैं वे ही जिम्मेदार हैं। यहां हम चाहते सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने का अवसर आता है तब हम जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं। या तो हम करना नहीं चाहते, या कि हमारी अपनी अज्ञानता होती है, ये दोनों ही कारण बनते हैं, या हमारी अपनी असावधानी कह लीजिएगा, जिसकी वजह से हम जैसा चाहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा हम कर नहीं पाते, वैसी हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि लोग अगर किसी सर्विस में हैं और उनका ट्रांसफर होता है, तो जहां ट्रांसफर होता है वहां के बारे में बड़े चिंतित होते हैं, कहां जाकर के उस शहर में रहेंगे, जिस जगह हमको क्वार्टर मिलेगा उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं, वो मोहल्ला और मेरे आस पड़ोस के लोग अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, कितनी बातें तो मन में आती हैं। लेकिन जब हम यहां से अपनी इस देह से ट्रांसफर होकर के दूसरी देह में जाने की तैयारी करते हैं, तब हम कहां पहुंचेंगे, कैसा पड़ोस मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी जगह मिलेगी, इसका जरा भी विचार नहीं करते। अगर हम इस चीज का विचार कर लेवें तो हमारा अपना जो जीवन जैसा हम जीना चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा। एक आठ कर्मों में से कर्म है जो हमारी इन सब बातों को निर्धारित करता है, जिसे नाम कर्म कहते हैं। हमें किस गति का अनुभव करना है, किस गति में जाकर के हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, ये निर्धारित करने वाला भी कर्म है। उस गति में पहुंच करके मुझे अपनी देह की संरचना किस तरह से करनी है, ये भी मैं अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुरूप ही करता हूं। मेरे साथ उसका एक प्रिंट पहले से रहता है, जैसा मुझे अपने शरीर का निर्माण करना है। मेरी आंख का रंग क्या होगा, मेरे पूरे शरीर का रंग क्या होगा, मेरे कानों की शेप और साइज क्या होगी, मेरे हाथ छोटे होंगे कि बड़े होंगे, उंगलियां, सब कुछ, मेरे शरीर में स्थिर और अस्थिरता कैसी रहेगी, मेरे शरीर में कांति रहेगी या कि निस्तेज शरीर रहेगा, दूसरे को मेरा शरीर ठीक जान पड़ेगा या ठीक नहीं जान पड़ेगा, दूसरे लोगों के बीच मैं सौभाग्यशाली माने जाऊंगा या कि दुर्भाग्य में ही जीवन व्यतीत कर दूंगा, मेरा चारों तरफ यश फैलेगा कि नहीं फैलेगा या कि अपयश और अपवाद में ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, ये सब मैं यहां पर अपने पूर्व संचित कर्मों से पहले ही निर्धारित करके यहां उत्पन्न होता, जहां भी उत्पन्न होता। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, जो हमारे पूरे शरीर और उसके इर्द गिर्द होने वाली चीजों को निर्धारित करती है। लेकिन हमारी असावधानी, हमारी अज्ञानता और हमारी पुरुषार्थहीनता, ये सब मिलकर के और हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होने देती। हम क्या करें, दोनों तरह की देह शुभ और अशुभ मिल सकती है, दोनों तरह का मन शुभ और अशुभ हमें मिल सकता है, गति भली और खोटी हमें मिल सकती है, ये हमारे ऊपर निर्धारित करता है, किसी और के हाथ में ये चीज नहीं है, हमारे हाथ में ये चीज है। आचार्य भगवंतों ने 2 सूत्र लिखे कि ये सब हमारे हाथ में है तो हमें क्या करना चाहिए, योग वक्रता विसंवादनम च शुभश्च नामना। खोटी गति बांधनी हो, इंद्रियों की विकलता का अनुभव करना हो, शरीर का कुरूप बनाने का मन हो, आंख से 4 दिन दिखता था फिर आंख से रोशनी चली गई, कान से कुछ दिन सुनाई पड़ा फिर सुनाई नहीं पड़ता, या कि बचपन से ही ना कान से सुनाई पड़ता है ना आंख से दिखाई पड़ता है, कैसी स्थिति निर्धारित करनी है, ये सब खोटी स्थितियां जितनी भी हैं उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना। जितनी भी अशुभ बातें मेरे जीवन में शरीर को लेकर के हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार है मेरी मन वचन काय की कुटिलता, और इतना ही नहीं विषमवाद की प्रवृत्ति, ये मेरे अपने इस वर्तमान के जीवन में अगर कुछ अशुभ प्राप्त हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार है। योग वक्रता यानी मन वचन काय की कुटिलता। मंदिर में बैठे हैं, मुनि जनों के सामने बैठे हैं, जिनवाणी मां के स्वाध्याय सुन रहे हैं, पैर कहीं फैला है, सिर कहीं टिका हुआ है, कैसे भी बैठे हुए हैं, योग वक्रता क्या करेगी, ये आगे शरीर को ऐसा ही बदलाएगी जैसा कि आपने इन सब के सामने रखा था, अपना शरीर को टेढ़ा मेढ़ा हिलाते डुलाते, इधर उधर हाथे आंख मटकाते, हाथ फिराते, हाँ ये सब डिसाइड करेगा आगे के जीवन के लिए। बड़ी सावधानी से इन मन वाणी और शरीर का उपयोग करना, वरना ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं, बहुत लाभकारी भी चीजें मिली हमको, मन वाणी शरीर अगर इनका सदुपयोग कर लिया और जरा सा इनका दुरुपयोग किया तो ये सबसे हानिकारक भी है जीवन के लिए। श्री गुरु देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अति आनंदे तीन प्रदीक्षण दे सिर नायो करी पूजा थितकीनी, साधु समीप विनय करी बैठियो चरणन में दिठी दीनी। ये कह रहे हैं साधु समीप विनय करी बैठियो, इसमें साधु की जगह जिनवाणी रख लो, इसमें साधु की जगह अरहंत और सिद्ध भगवान रख लो, सबके समीप विनय करी बैठियो चरणन में दिठी दीनी। तब वो मन वचन काय की जो प्रक्रिया है वो हमें हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने में कारण बनेगी, और यदि हम इनमें चूक जाते हैं, जे भगवान के पांव छुए उससे उनके हाथ लगाए, उससे उनके लगाए, फिर बाद में छाती से लगा लिए। मन वचन काय की प्रवृत्ति पर ध्यान रखना, आप जो क्रिया कर रहे हैं भले ही आपके भावों में कुछ और है, पर आपकी एक क्रिया आपके लिए लाभदायी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं कि लाभदायी है। एक भगवान के स्पर्श करने में और कितनी सावधानी की आवश्यकता है। मुनि जनों के लिए लिखा हुआ है कि एक हाथ दूर से भगवान के दर्शन करें, क्योंकि सांस अगर भगवान से टकराई है तो अभिनय हुई है, हाथ टकरा गया है तो अभिनय हुई है, वस्त्र ओढ़ते समय टकरा गया है भगवान की मूर्ति से तो अभिनय हो गई। और हम एक हाथ नहीं, हम तो हमारा बस चले तो अपना माथा जो है भगवान के पैर पे या महाराज के पैर पे रगड़ देवे। सो माथा रगड़ने से नहीं होता, जीवन रगड़ रगड़ के उनके आचरण से धो तो जीवन पवित्र हो जाता। अकेले माथा रगड़ने से तो उनका पैर भी अपवित्र हो जाएगा, आपका तो माथा पवित्र होगा ही नहीं। ये मन इस तरह से व्याख्या कर रहा हूं मैं, मन वचन काय की यहां से शुरू करें, कहां से हमारी प्रवृत्ति संभलेगी। पहले तो धर्म स्थानों में प्रवृत्ति संभले, तब फिर घर गृहस्थी में प्रवृत्ति संभलेगी। और तीनों की प्रवृत्ति अगर हमारी अशुभ है तो मानिएगा कि वो सब अशुभ नाम कर्म के खोटी गति और खोटे ही शरीर के निर्माण में कारण बनेंगी, अपयश में कारण बनेंगे। मन वाणी और शरीर तीनों की संभाल करना, तीनों के स्वभाव को समझना। अग्नि का स्वभाव समझ करके जैसे कोई अग्नि में हाथ नहीं डालता उससे बचता है, सांप का स्वभाव समझता है के विषाक्त है उससे दूर रहता है, अपने बच करके सुरक्षित जीवन जीता है, ऐसा ही ये है कि हम संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को जान करके मन वाणी और शरीर का ऐसा व्यवहार करें जिससे कि इन संसार शरीर और भोगों के बीच रह करके भी हम कर्मों से लिप्त ना हो सके। ये हमारा अपना पुरुषार्थ है, समीचीन पुरुषार्थ है। वरना तो कदम कदम पर हर क्षण हम शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों से लिप्त होते रहते हैं, क्योंकि लिप्ते इति लेश्या, हमारे जैसे परिणाम है, जैसी मनवाणी शरीर की क्रिया है वैसे कर्म निरंतर हमारे साथ बाइंड अप होते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। हम जितने संभले हैं उतने शुभ कर्म चिपकेंगे, जितने हम असावधान हैं उतने अशुभ कर्म चिपकेंगे। कर्म तो किसी भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब हमारे से न चिपकते हो, ना बंध को प्राप्त होते हो। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उस कर्म बंध की प्रक्रिया में शुभ अशुभ का विचार करके शुभ को डोमिनेट कर सकते हैं और अशुभ का दबाव कम कर सकते हैं। अपने मन वाणी और शरीर की निश्चलता, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तनसो करिए का आशय यहां स्पष्ट होता है कि मन वाणी और शरीर की कुटिलता के मायने क्या है और सरलता रखने के मायने क्या है। मन में ऐसा कुछ ना सोचें जिससे बाद में ग्लानि का अनुभव हो स्वयं, वाणी से ऐसा कुछ ना बोले जिससे बोलने के बाद फिर स्वयं ही क्षोभ हो, दूसरे को सुनकर के क्षोभ हो, और इस शरीर के द्वारा ऐसा कुछ ना करें जिससे कि बाद में और मन में बार बार ये विचार आवे कि ऐसा नहीं करना था, इतना ही कर ले। करने के बाद सोचते हैं कि यह नहीं करना था, करने से पहले सोच लें। बोलने के बाद सोचते हैं कि अरे इससे तो मेरा मन भी दुखी हुआ, सामने वाले को भी शोभ हुआ, तो बोलने से पहले सोच लिया होता। और विचार करते समय ऐसा विचार, खोटा विचार मन में आ गया जिसके लिए हमें स्वयं ग्लानी का अनुभव हो कि बताओ तो जब कहां से सोच ली हमने ऐसी खराब बात। ऐसी मन में स्वयं ग्लानी होती तो फिर वैसा मन में क्यों सोचें। मन दोनों तरह से हमारे लिए मिला हुआ है, हम चाहें तो उसमें घृणा और द्वेष पाल लेवे और हम चाहें तो प्रेम करुणा और मैत्री वे भी हम उस मन में पाल सकते हैं जैसा हम चाहें। हम चाहें तो आत्मिक सुख को ही सच्चा सुख मान सकते हैं, हम चाहें तो भौतिक सुखों को ही सच्चा मान के और वही विचार अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी प्रवृत्ति स्वार्थ पूर्ण कर सकते हैं, हम चाहें तो अपनी प्रवृत्ति परमार्थ की कर सकते हैं। हम चाहें तो दूसरे के असुरक्षित करने में ही अपनी सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे के लिए असुरक्षा में न डालने का विचार भी कर सकते हैं। हम चाहें तो सिर्फ अपना ही ख्याल ना रख करके दूसरे का भी ख्याल रख सकते हैं। भाई ये हमारे मन के ऊपर निर्भर है कि हमें क्या विचार करना है। हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम ऐसा विचार करें जिसमें हमारा परमार्थ सदैव, स्वार्थ में तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, हम क्यों ना ऐसा विचार करें जिससे कि स्वपर कल्याण हो। क्यों ना हम इस तरह का विचार करें जिससे कि अपनी और प्राणी मात्र की सुरक्षा हो। हम भयभीत अगर होना चाहते हैं तो पाप से भयभीत हो, हम तो अभी त्याग तपस्या से भयभीत हो जाते हैं। कैसा विचार हमारे भीतर है, जरा विचारों पर विचार करें, हमारे भीतर उठने वाले विचारों पर, कि देखो कैसी प्रवृत्ति कैसे विचार हमारे भीतर है। तब हमारे उन विचारों को हम एक ठीक दिशा दे पाएंगे और जिसके विचारों में कुटिलता है वो किसी दूसरे का अहित नहीं कर रहा, अपने ही आगामी जीवन की रूपरेखा बना रहा है, डायग्राम बना रहा है, अपने देह को बनाने का डायग्राम। हाँ ये ध्यान रखना, उसका डायग्राम हम खुद बनाते हैं, अपने शरीर का, अपनी गति का, अपनी इंद्रियों का, इन सब का इसी समय बनाते बैठे बैठे यहीं पर अपने मन के खोटे विचारों के द्वारा, वाणी की अशुभता के द्वारा और कर्मों की अशुभपना के द्वारा। और विसंवाद, इस पर विचार करेंगे, इसके पहले एक मन वाणी और शरीर के छोटे छोटे से उदाहरण से शायद बात स्पष्ट हो जाए, तो अपन पहले स्पष्ट कर लें फिर विसंवाद क्या कहलाता है इस पर विचार करें, ताकि इस प्रक्रिया से हम बच सकें। क्योंकि तद विपरीतम शुभस्य, मन वचन काय की कुटिलता अगर मेरे लिए अशुभ है तो मन वचन काय की सरलता मेरे लिए शुभ है, और विषमवाद अगर मेरे लिए दुखदाई है तो संवाद करना मेरे लिए सुखदाई है। इतना ही है अशुभ और शुभ नाम कर्म के लिए। और फिर अकलंक महाराज के चरणों में बैठेंगे और उनसे कुछ थोड़ी सी डिटेल बातें जो है इसके बारे में समझ लेंगे। अभी पहले ये देखें कि मेरे मन में सब तरह के विचार आते हैं, जैसे ही खोटे विचार मेरे मन में आए मैं क्या करूं, और मेरे अंदर अगर अच्छे विचार आते हैं तब मैं क्या करूं। खोटे विचार आने पर मैं उन्हें जल्दी से जल्दी हटाने का प्रयास करूं, लेकिन जितना मैं हटाता हूं उतने और आते हैं। तब सीधा सा उपाय है कि मैं खोटे विचारों के अभ्यास को ज्यादा ना बढ़ाऊं, मैं उसी समय उस काम को स्थगित करके अच्छे किसी काम में अपने मन को लगा दूं। इसीलिए कहते कि भैया पूजा कर लो, भैया स्वाध्याय कर लो, भैया चार अच्छे लोगों के बीच बैठ के बात करो। तुम्हारे मन में आने वाले खोटे विचारों से बचने का इतना ही उपाय है, क्योंकि खोटे विचार किसी भी क्षण रुकते नहीं हमारे जीवन में। आप देख लो, एक दिन खाली बैठ करके देख लो, और खाली जहां बैठे सो इतने की इतनी बातें आएंगी कि अपन सोच नहीं सकते। बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखाते कि हम बहुत अच्छे हैं, और भीतर अगर भीतर एक तो मशीन लगा की होती कि मशीन लगा देती और सब टेप हो जाते कि जी का सोच रहे। हाँ तो अपन नहीं सुनते तो अपन बहुत छोने लगते हो कि देखो तो हम जी ऐसी खोटी बातें सोच रहे। हमारे मन में निरंतर ऐसे खोटे विचार चलते रहे, उसको संभालने के लिए क्या करें। तो कहते अच्छी संगति करो, सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में रहो, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा उस तरह से व्यतीत हो तो हम खोटे विचार से बच सकते, और बाकी लड़ना मत खोटे विचारों से। अंधेरे को लाठी लेकर के कमरा में वो घुमाओ कि निकल जावे बाहर, सो नहीं निकल बारो अंधियारो। हाँ, लाठी से नहीं निकलता वो तो निकलता है रोशनी जलाने से, रोशनी करने से। हमारे अपने मन में भी खोटे विचारों को कैसे निकाले, अच्छे विचारों की रोशनी करें, या कि जिनके पास अच्छे विचार हैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करके और अपने भीतर भी छुपे हुए अच्छे विचारों को लाएं। एक उदाहरण जो मैं कह रहा था कि एक चोर था, ट्रेन में चला जा रहा था, उद्देश्य क्या था, किसी का कुछ कहीं थोड़ा कोई चूक जाएगा तो चुरा लूंगा। और उसने देखा कि एक बुजुर्ग वार बाबा जी बैठे हैं और पास में बिल्कुल कनस्तर धरे, वो कनस्तर तो खुलो है, ऊ में भरी रुपया पैसा। अब बताओ इतनो बिल्कुल मैंने साफ साफ मौका है भी, बुजुर्ग वार हैं तो उनकी तीस देर लगनी उनको धक्का मार करके और उसको उठाने में। तो उसने विचार कर लिया कि ठीक है, जैसे ही बुजुर्गवार धक्का भी काय को दे, जैसे ही ये बुजुर्गवार हैं इनकी तनक तो आंख लग गई, सुलगी सो हमने उठाओ कनस्तर और आगे बढ़े, पैसा से भरो है पूरा कनस्तर। और उसने किया भी ऐसा ही, आंख क्या लगी, बे बुजुर्गवार ज्यों कहते हो अपना कनस्तर वहां रखे रुपयों का और शुद्धि के लिए चले गए। बहुत समय होता जब तक वे शुद्धि होंगे, जब तक इनने तो उठाया और चल दिया, काम हो गया। विचार है मन में, विचार काहे का आया, खोटा विचार। अब देखिएगा जब उस कनस्तर के पैसे गिन करके रखने लगा अपने पास, तो उसमें कनस्तर में ही और एक रसीद बंदी दिख गई जी काहे की है, तो उसमें लिखा था कि बापू के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के लिए अपना सहयोग देवे। हाँ, उसके लिए ये, अरे बापू के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के आंदोलन के लिए सहयोग इकट्ठा किया जा रहा, और मैं इतना गया भी था कि मैंने ये चुरा लिया, धिक्कार है। अब लो विचार बदल गए। किस वजह से बदला भैया, अच्छी चीज याद आ गई, अच्छी संगति क्या चीज है, यही काम करती है। जरा सी चीज हमारे भीतर के शुभ विचार को उद्घाटित कर देती है, और जरा सी चीज हमारे भीतर के अशुभ विचार को उद्घाटित कर सकती है। इसलिए है तो हमारे उपादान के ऊपर निर्भर, लेकिन निमित्त भी इसमें हम ऐसे ढूंढें जिससे कि हमारे उपादान में अगर खोट भी हो तो भले निमित्त के सानिध्य में वो खोट निकल जाए। नहीं तो कई बार अच्छा व्यक्ति भी और गलत लोगों के संपर्क में, चारु दत्त का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रथमानु योग में महाराज सुना चुके घटना। अच्छा व्यक्ति चारित्रवान भी जरा सी संगति खोटी मिलने पर और अशुभ विचारों से घिर जाता है, और वो व्यक्ति देखिएगा इतना पाप में लिप्त चोरी करने वाला, और जरा से उस गांधी जी ने ये सत्याग्रह आंदोलन किया और उसका पैसा मैंने चुरा लिया। अब विचार बदला, जितने चुराए थे पैसे वे निकाले और वे भी उसी में डाल दिए, और बुजुर्ग बार इतने इतनी देर लगी जब तक वो शुद्धि करके आए, उतने में ये सब काम हो गया। भी आधे घंटे में लौट करके आए, तब तक इनका सब काम होके ज्यों कहते हैं उसमें कनस्तर ज्यों कहते हैं रख दिया, बुजुर्ग वार के पैर छू लिए। भाई क्या हुआ, कुछ दे रहे क्या सत्याग्रह के लिए? कहते मैं क्या दे सकता हूं सत्याग्रह के लिए, आप तो मुझे क्षमा कर दो। अरे भाई नहीं दे सकते तो नहीं दे, अब इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। मेरे भीतर इन सबके हड़पने का जो विचार आया था वो आपको नहीं मालूम, उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। अपन मांगते अपने मन में कहूं खोटो विचार आ, उसको दूसरे से कि देखो मां खोटो विचार आ गया, आप क्षमा कर दियो। अरे बहुत कठिन है, सही में आ जावे तो नहीं करत, फिर तो आ गया मन में तो पता ही नहीं लगन दे गए जो आ गया तो खोटो विचार। अब बताओ ऐसी कुटिल प्रवृत्ति से क्या बंधेगा, आप स्वयं विचार करो, किसी और से कहने की क्या आवश्यकता है। अपन स्वयं विचार करें कि कितने खोटे परिणाम हमारे भीतर आते हैं, उनको हम शेयर करते हैं, उनको हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में ऐसे हस्ता मलक बत ऐसे रख सकते हैं कि मेरे भीतर ये खोटा विचार आया, अब नहीं करूंगा। नहीं, स्वीकार करना ही बहुत कठिन है। ये भी एक कुटिलता है कि मैं स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, बड़ा साहस चाहिए उसके लिए, स्वीकार करने के लिए। अपनी कुटिलता को समझना और कुटिलता को प्रकट नहीं करने की कुटिलता, ये निरंतर चलती रहती प्रवृत्ति। इससे ही हमारे अशुभ नाम कर्म, अशुभ गति इत्यादि सब 93 प्रकृतियां हैं। सबसे बड़ी फैमिली है इन लोगों की, नाम कर्म वालों की, बड़ा परिवार है इनका। 93 लोग हैं, ये एक साथ आते हैं, सब निर्धारित करते हमारे अपने जीवन का। और उसके लिए कौन है? हमारे अपने परिणाम। वाणी देखिएगा, चाहते तो दूसरे हैं से कि हमसे वो प्रेम से बोले, कठोर ने बोले कहूं, बहुत अच्छा है आपका इस तरह से सोचना, लेकिन हम स्वयं भी देखें कि हमारी वाणी में क्या कर्कशता और कठोरता नहीं आ जाती है। हम अपेक्षा दूसरे से रखते तो क्या कोई हमसे अपेक्षा नहीं रखता होगा? ऐसा ही, इतना ही विचार कर ले तो हमारी अपनी वाणी में भले ही कितनी भी कर्कशता होवे, लेकिन अंतरंग में अगर हमारे उस बोलते समय भावों में कर्कशता नहीं है, कड़वापन नहीं है। मैंने उस दिन ये कह नहीं पाया था जब सत्य के बारे में बात कर रहे थे। लोग हमेशा कहते हैं कि भैया हमने सच्ची कह दी, सुबराई लग गई, सत्य तो कड़वा ही होता है। ए भैया, समार के, सत्य कड़वा नहीं होता, कड़वे मन से जो कहा जाता वो कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो मीठा ही होता है, सत्य तो मधुर ही होता है, लेकिन उसको कहते समय आपके मन की कड़वाहट उसको कड़वा कर देती है, वैसे वो कड़वा नहीं होता। इसलिए जब भी कहें हम तो सच्ची कह रहे, अरे सच्ची कह रहे, लेकिन भीतर तो झांक के देखो कि किस कुटिलता से कह रहे। कई लोग जो है सत्य भी बोलते हैं, लेकिन वाणी की कुटिलता क्या कहलाएगी? अंदर में भाव कुछ और है और वचन से तो कुछ और बोल रहे हैं। ये सावधानी बहुत आवश्यक है अपने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दूसरे के लिए तो ठीक है भैया, पर सापेक्ष तो विसंवाद भर लिखा है कि आत्म सापेक्ष है मन वचन काय की कुटिलता, और पर सापेक्ष है विसंवाद, ये भी आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया। इसलिए मन वाणी और शरीर ये हमारे स्वयं के निजी हैं। ये एक और वाणी से हमेशा, अशुभ वाणी से बचने का उपाय क्या है? हमेशा अरंसिद्ध 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 करत रहो। जब भी बोलो तो नमोकार, जब भी क्रोध आ जावे तो नमो अरंतानम नमो सिद्धानम, बोलने ही नहीं है, झगड़े ही खत्म। और अब लेकिन बिना बोले नहीं रहा जा रहा, सो बोल रहे नमो अरंतानम नमो सिद्धानम। भैया काय नमो अरंतानम बोल रहे, कह रहे हम कछु और खराब ने कह दी, में डर लगता है खराब ने निकल जावे हमें मुंह से, क्योंकि रुक नहीं पा रहा मुंह से कुछ ना कुछ तो कहना है, लेकिन जोर जोर से कह रहे नमो अरंतानम नमो सिद्धानम। अब बताओ कैसे संभालें? ऐसे संभलेगा। ये मंत्र का उच्चारण बार बार करने का उद्देश्य क्या है? मैं सोचता हूं क्यों बार बार कहा जाता, एक माला फेर लो, जोर जोर से पढ़ के फेर लेना। इसलिए कि अगर जोर से बोल के करोगे तो वाणी पवित्र होगी, मन में करोगे तो मन में आने वाले अशुभ विचार हटेंगे। और अभी तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, मुझे यहां वहां की क्रियाएं नहीं करना चाहिए, सो शरीर संभल गओ। बताओ, तीनों चीजों को संभालने में एक अकेले मंत्र का जाप। एक रामानुज नाम के संत हुए हैं, उनके बचपन में उनके गुरुजी ने उनको एक मंत्र दे दिया कि लो ये मंत्र का जाप करना, और सुनो कोई से बताना मत। अच्छा, ऐसी अपन कह दो कि कोई से न कहियो तो जरूर के है, जा बड़ी दिक्कत। मैंने अपने मन में किस तरह, क्या ये मैं बहुत सोचता रहता हूं कि ऐसा क्यों होता, लेकिन है प्रवृत्ति है। तो उन गुरुजी ने कहा कि कोई से कहना मत, ये तुम्हारे लिए है, बहुत रहस्यपूर्ण है, अपने अकेले पढ़ना। अब जैसे ही उनसे, और तो गुरुजी इससे होगा क्या? कहते इससे बहुत लाभ होगा, ये बहुत लाभकारी मंत्र है। ठीक है, अब दूसरे दिन से भैया ने ऊपर छत पे जाके जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। गुरुजी नीचे से निकले, उनको आवाज आई तो बड़े नाराज हुए, बुलाया, क्यों, हमने तुम्हें समझाया था किसी को बताना नहीं और एकांत में पढ़ना, और तुम तो इतने जोर जोर से पढ़ रहे। तो मालूम क्या जवाब दिया, गुरुजी आपने ये भी तो कहा था कि इसके पढ़ने और सुनने से बहुत लाभ होता है, तो मैंने सोचा कि एक अकेले मुझे ही काय को हूं, जो जो सुनेंगे सबको लाभ होगा, इसलिए मैं जोर जोर से पढ़ रहा। अब वाणी ऐसी हो जिसमें कि मेरे साथ साथ दूसरे का भी लाभ हो, फिर देखिएगा कि वाणी अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। मेरी वाणी से दूसरे को कभी लाभ ही नहीं पहुंचता, मैं हमेशा जो है ऐसी वाणी जो श्रेष्ठ है वो मेरे अपने लिए भी है, सबके लिए। अपन तो सुनाने बैठ जाते हैं अपने वचनों से दूसरे की निंदा। सुनाना चाहिए थी अच्छी बात कि आओ आज बैठे हैं तो अच्छी बात तो सुनो मेरे मुंह से, इस मुंह से मैं दूसरे की खोटी बातें क्यों करूं। वचन मिले हैं तो इसके लिए थोड़ी मिले हैं कि मैं यहां वहां की दूसरी व्यर्थ बातें करूं, वचन का सदुपयोग करूंगा मैं तो, अच्छी बात होगी तो अच्छी बात करूंगा, बुरी बात नहीं करूंगा। जिस मुंह से मैं भगवान जिनेंद्र की आराधना का उच्चारण करता हूं, मंत्र का उच्चारण करता हूं, मुझे उसी मुंह से दूसरे की निंदा करनी चाहिए कि नहीं, ये विचार अगर मन में आ जावे तो फिर देखिएगा क्या परिवर्तन होता है। कह तो रहा हूं लेकिन बहुत साधना करनी पड़ेगी भैया इसके लिए। और तीसरी चीज, कर्म, हमारी अपनी शरीर से होने वाली क्रियाएं, उन सब का भी हम सदुपयोग कर लें, और इतना ही नहीं इस शरीर का भी सदुपयोग कर लें। जो अपने शरीर का सदुपयोग नहीं करते, सदुपयोग क्या है, राचन जोग न, हाँ, राचन योग स्वरूप न याको, विरचन योग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, जामे सार यही है। याद तो है अपन को, मनो हो नहीं पाते। हाँ, अपने को ये चीज चलो कम से कम इतना ही गुंजाइश है कि जब मालूम है, नहीं तो कई लोगों को जय भी नहीं मालूम, उनको तो जा मालूम के शरीर मिलो है सो अच्छो खा ले और अच्छी मौज मस्ती कर ले, फिर वो के बाद मिलो कि नहीं मिलो का पता। ऋणम कृत्वा घतम पिवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः, अरे तुम तो उधार लेके भी और अच्छे मौज मस्ती से रहो, पाक का पता, फिर बाद में मिलो के नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, ऋण लेकर के भी घी पियो आराम से, क्योंकि भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः, अरे एक बार शरीर जल गया तो फिर थोड़ी मेरे बार हो। ऐसे भी लोग हैं, अपन को कम से कम इतना तो ध्यान है कि जी शरीर इसके लिए लाने नहीं मिला, हमें मिला है कि इसमें आशक्त नहीं होना, इस देह को तो तपस्या में लगा देना, यही सारभूत है। हम ऐसा विचार, इस शरीर का 24 घंटे में कितना काम शरीर से करते हैं भैया, सो इतने ही विचार कर लो कि कौन सा काम आत्म और पर कल्याण का किया और कौन सो उपद्रव को करो, सो अपन को पता लगे कि कब 23 घंटा और 50 मिनट तो उपद्रव ही को काम करो और 10 मिनट थोड़ो स्वपर कल्याण को करो शरीर से, और उसको बढ़ाते जाओ। अब वो जो 10 मिनट है भी बढ़ते चले जाए, और कुछ नहीं करना, कोई किसी से पूछने थोड़ी जाना, अपने बस अपने आप दूसरे घटाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि 23 घंटे 50 मिनट घटाओ, नहीं, घटाने की आवश्यकता नहीं, 24 ही है जी, बढ़ाओ सुबह अपने आप घटत चले। हमने आज 1 घंटा पूजा करी, लियो 23 घंटा ले गया उपद्रव के, 1 घंटा तो सार्थक होगा, हो गया काम। आज हम तो 1 घंटे माला फेरेंगे, लियो वो 1 घंटे और बच गया, जितने बचा सको अशुभ से उतने बचा लो, वो ही शुभ है। ऐसा विचार करके और हम अपने मन वाणी और शरीर को संभालना चाहें तो संभाल सकते। और फिर कहते कि विषमवाद, विषमवाद का एक अर्थ तो होता है साधर्मी से तू तो मैं करना, जी विषमवाद, जी हमारा जी तुम्हारा, जी 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 अपने पराये का जो भेदभाव है वो भी विषमवाद उत्पन्न करता। और दूसरी परिभाषा आचार्यों ने जो बनाई है कि कोई व्यक्ति अगर स्वर्ग और मोक्ष में कारणभूत क्रियाओं को करता हो तो उसे यह कहकर कि इसमें क्या रखा है, इसके करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा उसे उससे विचलित कर देना, यह भी विषमवाद है। ऐसा संवाद जिसमें कि दूसरे का अहित हो गया वो सब विषमवाद हमारे अशुभ नाम कर्म अशुभ गति के लिए कारण बनता है। और ऐसा अपन कितनी बार दिन भर में कर लेते हैं। कोई व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष में कारणभूत अगर धर्म ध्यान कर रहा है तो उसके धर्म ध्यान में सहयोगी न बन पाए भैया, तो कम से कम उसको धर्म ध्यान से विचलित तो न करें, और दूसरे 100 काम बता करके उसका धर्म ध्यान तो न छीने, इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा करके हम अपने आगामी जीवन को सुंदर बना सकते जैसा हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सुंदर बने। और अकलंक स्वामी ने जो बातें कही वो थोड़ी सी संक्षेप में मैं कागज पर लिखे रहता हूं, याद तो रहती नहीं इतनी अब ज्यादा, 30-35 साल तक तो पूरी याद रहती, यूं के बाद तो फिर जितनी याद है उतना ही रहते, नहीं तो जोड़वे में बहुत दिक्कत होती। हाँ ईमानदारी से तो यही बता रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत प्रयत्न किया जी। सकल के क्या है कि विनती नहीं उठती हमें, सन 1997 तक आप विचार करो, फिर बहुत मेहनत करके 4 महीने में रोज रोज पाठ करके और सीख ली। बहुत अभ्यास से ये पड़ता बाद में, अपन को अबे छोटे जो हैं उनको तो ये चीजें कर ही लो चाहिए, बाद में तो फिर ये नहीं हो पे, अबे कर लो सो बाद में काम में आएंगे। कि चलो कम से कम कहूं बैठे हैं तो आधा घंटा की लायक कंठस्थ तो है कछु नैया, किताब सो नैया नैया को संगे सो नैया, अपन अकेले बैठे आधा घंटा अपने पाठ ही कर ले, बच गए अशुभ से तो कंठस्थ काम में आ जाता। अब लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको ऐसे ही इसमें से लिखी हुई बता रहा हूं। चुगलखोरी की आदत नंबर 1, ऐसा लिखा उसने तो ऐसे लिखा हुआ है जी, जितनी भी चुगली करने की आदत है, आचार्यों ने लिखा पिशुनता, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, भी तो तुम्हारी लाने ऐसी कह रही थी, अब ले ऐसा करने से क्या लाभ मिलता है, कितने खोटे परिणाम नहीं होते होंगे ऐसा करने में, मन वचन काय तीनों दूषित हो गए कि नहीं, मन में भी खराब विचार आया तब तो आपने चुगली करी और वचन से भी अशुभ वचन बोल दिए और शरीर से वैसी क्रिया करी। इसके लिए तो भक्त कोनों केते कछु अच्छी चीज हो जावे तो बतावे ने भागे अपन शरीर से, वो कोनों की कोनों चुगली करने हुई है तो प्लान करें कि कब मिल जाए और कौन सी मौका पे चुगल यहां है, सो कितनों उद्यम करते हैं नहीं विचार तो करो आप। हाँ उसका मन लेंगे फिर अबे फुर्सत सो बैठो है बढ़िया है काय कैसो का चल रहा हो सब, और फिर बाद में धीरे से दूसरे की उनसे स्टाइल तो यही है, सब सबकी करीब वही है कछु नई थोड़ी बता रहे हम, सब सीख सब पुराने आसामी हैं, ये सब आदतें अपनी बहुत पुरानी जी तो बदल भी बैठे अपन और काय के लिए बैठे, ये सब खोटी आदतें अपनी पड़ी हैं जिससे कि संसार बढ़ाती रहती और अज्ञानता है, समझते नहीं कि हम बढ़ा रहे अपनों संसार अपने हाथ से, इसलिए विचार करते कि नहीं जी अच्छी आदत नहीं है, अगर है तो इसको हटाना चाहिए। फिर कहते अस्थिर चित्त, जिसके चित्त में स्थिरता नहीं रहती है, कभी इधर कभी उधर, अपन का कहते के मुरादाबादी ढुलक गए, कोई स्थिरता तो होनी चाहिए परिणामों में, ये अस्थिरता चित्त की यह भी हमारे अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बनती। झूठे माप तोल रखना और मिलावट करना, झूठी गवाही देना, दूसरे के अंग उपांग का छेदन करना, दूसरे के लिए मर्म भेदी बात कह देना, अंग उपांग का छेदन तो नहीं किया लेकिन हृदय को छेदने वाली वाणी कह दी, वह भी जो है हमारे अशुभ कर्म के बंध की कारण बनेगी। और महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि मंदिर के गंधमाल धूप इत्यादि हड़पने की या कि देव धन हड़पने की भावना हो, यह भी सब अशुभ नाम कर्म के लिए आश्रय का कारण है। जो हमने दान स्वरूप कह दिया उसके बाद उसे एक दिन भी अपने पास नहीं रखना, वरना मन वाणी शरीर सब हमारे उसको लेकर के जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ खा जाएंगे। आप देख लो कहीं ना कहीं मन में आसक्ति देने के बाद आ सकती है, आती ही है। दे दे हैं, अब कौन खाए जा रहे, कौन भगे जा रहे जी, क्यों दियो ना तुरंत, देर क्यों? हड़पने का भाव मन में आ सकता है तो देव धन और देव द्रव्य, द्रव्य तो वो कहलाती जिससे पूजा इत्यादि के लिए अपन रखते हैं चावल इत्यादि, और धन वो कहलाता जो गुल्लक में रुपए डाल देते हैं या रसीद कट्टा पे लिखवा देते हैं, वो सब देव धन है। ये देव द्रव्य और देव धन दोनों को हड़पने का भाव रखना, ये सब अशुभ नाम कर्म के लिए कारण है। अंतराय के कारण तो है, नरकायु के कारण है, लेकिन साथ में लिखा कि अशुभ नाम कर्म के, ये जो विकलांग और ये जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं उसका कारण यही है। मंदिर में से चुरा के हमने तो देखा, गुल्लक में से बताइएगा, मंदिर में काम करने वाला ही क्या करता है, उसमें तार डाल करके और धीरे से रुपए उसमें फंसा करके और नीचे ले लेता। अब अभी तो तुम्हें कछु नहीं लग रहा हो कि जी 100 रुपया ले आए हैं, सब वहीं कछु खा पी के बढ़ा ले हैं, मनो आगे की लाने का कर रहे हो आप? आपने तो इतने निकाल ली उसमें से होशियारी से, ये सब चालाकी से, ये कुटिलता, ये सब देवधन और देवद्रव हड़पना हमारे अशुभ नाम कर्म का कारण बनेगा। ईंटों का भट्टा लगवाना अशुभ नाम कर्म का, दिखा आचार्य सब समझते थे, और जितने भी दूसरे के ठहरने के स्थान हैं, बाग बगीचा हैं, उनको नष्ट कर देना यह भी अशुभ नाम कर्म का कारण है। दूसरे के उठने बैठने के अच्छे स्थान हैं कि यहां व्यक्ति विश्राम करता है, यहां छाया है, इसमें बैठ जाता है, सो वहां पर ऐसे मचा दिया कि कोई बैठ न सके। बाग बगीचे में जहां लोग बैठते हैं वहां पर उसको उजाड़ दिया, ये सब अशुभ कर्म के बंध का कारण है। भैया इतनी सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे संसार में भटकाने में कारण बनती हैं, अपन तो एक एक विचार करते रहते हैं, उसमें से कुछ चीज अपन की याद में रह जावे तो अपन संभल जाएंगे। संभलना अपने को ही पड़ेगा, बिना अपने संभले आगामी और वर्तमान जीवन संभल नहीं सकता। ऐसा विचार करके कि हमें अपने जीवन को, मनवाणी शरीर को संभाल करके इस देह को सार्थक बनाना है, इस जीवन को सार्थक बनाना, उसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत वो दो हे जिन वाणी भारती तो हि जपो दिन रैन जो तेरे शरणा गए सो आवे सुख जैन।
अच्छा हुआ जो आप कह रहे थे कि कुएं में डालने से भी अच्छा हुआ, बोले राजा साहब अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी तो चली गई थी, अच्छा हुआ कुएं में डाल दिया था आपने, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, आपकी उंगली का कटना भी अच्छे के लिए हुआ और आपका मुझे गुस्सा होकर कुएं में डालना भी अच्छे के लिए। बताइए ये सकारात्मक सोच है कि नहीं, ये कैसे पैदा होता है हमारे भीतर, ये श्रद्धा और आस्था से पैदा होता है। जब हमारी हमारे स्वरूप के प्रति श्रद्धा होती है तब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि जो व्यक्ति वितरागता के प्रति श्रद्धा रखता है संसार में होने वाले राग द्वेष के फलस्वरूप जो सुख दुख है हर्ष विषाद है उनके उनके पीछे उसे साम्य भाव ही रखने का मन होता है कि ठीक है जो भी है ठीक है। ऐसा विचार कहां से आया? उसी वीतराग मुद्रा के दर्शन से, उसी के प्रति श्रद्धा और आस्था से। और इतना ही नहीं, ये श्रद्धा और आस्था निश्चिंतता बहुत देती है। देखिएगा वो मंत्री जी कितने निश्चिंत थे इस बात के लिए, और कुएं में पड़े हुए हैं फिर भी उनको कोई आकुलता और विकलता नहीं है मन के भीतर। कितनी निश्चिंतता व्यक्ति को मिलती है कि कोई है जो हमें संभाले हुए, सबसे बड़ी चीज है। कहीं हम अगर समर्पित हैं, कहीं हम आस्था से भरे हुए हैं तो हमें फिर ये एहसास होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है हमारे साथ है और वो हमें संभाल ले। हालांकि हमारा विचार, हमारी श्रद्धा ही हमें संभालती है, कोई और नहीं संभालता हमारे लिए, लेकिन वो जो श्रद्धा है और वो जो विचार है वो हमें संभाले रहता है, और हमें लगता है कि जैसे कोई हमें संभाले हुए है। हनुमान जी एक बार कहीं पढ़ा था मैंने, घटना आती है कि रामचंद्र जी को कंधे पर बिठाल करके और कहीं ले जा रहे थे। अब देखो इस झगड़े में नहीं पड़ना कि ले जा रहे थे कि नहीं, क्योंकि उस समय अपन लोगों में से कोई भी नहीं था, वो मुनिश्वरनाथ भगवान के समय में हुए थे, बहुत पहले होंगे 24वें तीर्थंकर। अब वो ले जा रहे होंगे मान लो अपन, और कंधे बिठा के ले जा रहे थे, विद्याधर थे, विद्या के माध्यम से वो जो चाहे वो कर सकते। तो अब जब कंधे में बिठा के कोई को ले जाएंगे तो डेफिनेटली कि वो कंधे को और पकड़ के बैठेगा। तो हंसी हंसी में रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान आप तो मुझे कंधे पर बिठा के ले जा रहे, लेकिन राजा दशरथ तो मुझे गोद में उठा के चलते थे जब मैं छोटा था, तब मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने मालूम क्या जवाब दिया, दशरथ जी बड़े हैं, वो आपके पिता हैं, वो आपको संभाल सकते हैं, इसलिए वो आपको गोद में संभाले हुए रहे, लेकिन प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, आपको कंधे बिठाले हूं, मैं क्या संभालूंगा, आप ही मुझे संभाले रहिए, पकड़े रहिएगा। ये क्या चीज है, मैं इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये तो बहुत एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं अपने को श्रद्धा और आस्था से भर करके जब समर्पित कर देते हैं तब इतनी ही निश्चिंतता और इतना ही हमारे भावों में निर्मलता अपने आप ही आ जाती है, और हम बहुत सारी उलझनों से संसार की बच जाते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी, एक नियरनेस, वो हमें हमेशा महसूस होती रहती है कि कोई है जो कि हमें हर स्थिति में संभाल लेगा। आज संसार में देखिएगा व्यक्ति चाहता क्या है, बताइए, कितने सारे संबंध बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां जल्दी से कोई ना कोई हमारे मन का मिल जाता है, उससे बात करने लगते हैं, काहे के लिए, कहीं हम अकेले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी हमारे आसपास हमारा अपना ना हो। हर व्यक्ति कोई कहीं भी जाएगा, घर में भी रहेगा तब भी सारे लोग अगर घर में हो और किसी के प्रति भी अगर अपनेपन का भाव नहीं है तो उस सारे लोगों के बीच भी क्या लगता रहेगा, जैसे होना नहीं होना, मैंने व्यर्थ ही है, जैसे कि जीवन ही व्यर्थ हो। क्या चाहते हैं हम हमेशा यहां चाहते हैं इस संसार में एक सहारा, एक शरण, और वो कैसे मिलती है, वो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमें स्वयं ही शरण देती है। अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से हम स्वयं सहारा पा लेते हैं और शरण पा लेते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति जिस पर हम पिछले दिनों से निरंतर विचार कर रहे हैं, हमारे जीवन को इतने ऊंचाई तक ले जाने में कारण बनती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन हमारे साथ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के केवल ज्ञान में सभी जीव झलकते हैं, यानी अगर दूसरे तरह से सोचें तो भगवान के ज्ञान में तो हम सब हैं, या और दूसरे तरह से सोचें तो भगवान तो सबके पास हैं, सबके साथ हैं। ऐसा अगर थोड़ा सा विचार कर लें अपन तो सर्व व्याप्तता के मायने क्या है, वो सबके निकट है, लेकिन उनके सबके निकट होने से काम नहीं चलेगा, हम उनके कितने निकट हैं या उन्हें हम अपने कितने निकट महसूस करते हैं ये महत्वपूर्ण है। कौन किसके साथ है या किसने किसका साथ लिया है, प्रिय वचन की टेव हो या नहीं वो लाइन दूसरी है, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में मन रंगा। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने किसकी संगति की है, कौन मेरे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने किसका साथ लिया है ये महत्वपूर्ण। एक बेटा नाराज हो गया अपने पिता से, वो अभी तक भोजन करता था पिता के साथ में, और नाराज होकर उसने पहला स्टेप यही उठाया कि हम पिताजी हम आपके साथ भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन देखा कि भोजन की थाली पर जब बेटा बैठा तो अपनी थाली उसने अलग लगवा ली, अभी तक तो पिता की थाली में ही खाता था, अपनी अलग लगवाई, और जैसे ही खाना शुरू हुआ उसके पहले ही पिता आकर के उसके सामने बैठ गए और उसकी थाली में से खाने लगे। तो उस बेटे ने कहा कि मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। बोले ठीक तो है, तुम्हारे साथ मत खाओ लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खा सकता हूं। आया समझ में? ठीक ऐसे ही कोई हमारे साथ है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं कि नहीं, वो कैसे होते हैं, हम अपनी आस्था से अपनी श्रद्धा से हम उनके साथ हो जाते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण है, आज मन छोटी छोटी सी बातें करने का है, आज मैं बिल्कुल भी संडे जैसे मूड में नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ी सी कोई एक चीज विस्तारूं, नहीं आज छोटी छोटी बातों से अपन कुछ सीख लें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। एक गुरुजी थे, उनका शिष्य उनके साथ में रहता था, हर समय रहता था, शिष्य की श्रद्धा तो अपने गुरुजी पर बहुत थी लेकिन कभी कभी शिष्य के मन में भी आ जाता था गुरु के प्रति कि सचमुच मैंने इनको गुरु माना है, इनके अंदर कोई सामर्थ्य वगैरह है कि नहीं। अच्छा, अपन लोग सामर्थ किसको समझते हैं मालूम? कुछ काम बनवा दें हमारा, हाँ और तब तो सामर्थवान कहलाएंगे, ऐसे थोड़ी कहलाएंगे। या कि कोई शेरवेर आ जावे तो उससे भी नहीं डरें, ऐसा ऐसी सामर्थ। तो जब वो एक बार जंगल में गुरुजी के साथ चला जा रहा था तो ध्यान का समय हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि ध्यान में बैठ जाओ, और गुरुजी ध्यान में बैठ गए। अब शिष्य का मन तो ध्यान में लग नहीं रहा था क्योंकि जंगल का मामला है, भीतर जो है डर तो था। श्रद्धा होती है तो निश्चिंता रहती है, अनिश्चितता नहीं रहती, भय नहीं रहता, क्यों? कोई हमारे साथ है, ये एहसास हमेशा बना रहता, वो हमें सेफ करेगा। अपन लोगों के अंदर इतनी मजबूत नहीं है श्रद्धा, अपने से टैली करके अगर देखें कभी, मैं ही खुद अपनी जो बात कह रहा हूं मैं अपने जीवन में घटित करके देखूं, अगर आप तो करें तो करें, तो मुझे भी लगने लगता है कि अपनी श्रद्धा कितनी कच्ची है, अपन कितने कई बार अनिश्चितता में से गुजरते हैं, कितने अपन छोटी छोटी चीजों को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, जो कि श्रद्धा हमको कितना निश्चिंतता देती है। अभी अपनी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं है जितनी कि हमें निश्चिंत बनाने के लिए दृढ़ श्रद्धा चाहिए। तो वो शिष्य भी थोड़ा सा चिंतित था कि कहीं कुछ होना, और सचमुच में ऐसा हुआ कि उसको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। घबराया वो कि छोड़ो ध्यान व्यान भगवान का, गुरुजी तो बैठ के अपने ध्यान में, ये भी नहीं बचाएंगे, अपन तो चढ़ जाओ पेड़ पर। तो वो अपनी ध्यान व्यान छोड़ करके पेड़ पर चढ़ गया, और सचमुच उसने देखा कि वो जो शेर की आवाज आई थी, शेर ही आ गया अब तो। उसने कहा कि गुरुजी तो गए, अब अपन तो बच गए, अपन तो पेड़ पे चढ़ गए, गुरुजी तो अपने ध्यान में लीन है। फिर भी उसके मन में थोड़ा सा आया कि शायद ये गुरुजी को देखें क्या करता है। तो शेर आया और जब गुरुजी को ध्यान में देखा तो उनके चारों तरफ चक्कर लगा करके और वापस चले गया। अब तो वो जिसको क्या कहते कि फ्लैट हो गया, वो है ना सरेंडर, उतरा शिष्य नीचे और साष्टांग हो गया। अरे वाह गुरुजी, मजा आ गया, इतनी सामर्थ आपके अंदर है, शेर आया और आपको सूंघ करके चला गया और आपको जरा भी डर नहीं लगा। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, ध्यान से उठ करके आगे बढ़ गए। अब तो शिष्य जो है बिल्कुल गुरुजी का पक्का भक्त हो गया। अपन हो जाते हैं ऐसा कोई चमत्कार मत्कार देख करके पक्के भक्त हो जाते हैं। हाँ, तो अब थोड़ी देर ही हुई थी चल करके, और उतने में कोई एक बड़ा सारा कीड़ा आया और वो गुरुजी के हाथ में काटने लगा। जैसे ही कीड़े ने काटा, गुरुजी कराहने लगे। अब फिर शिष्य की श्रद्धा डगमगाई कि अरे, इतने सामर्थवान मेरे गुरुजी, शेर आया तब तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, और ये इतना छोटा सा कीड़ा उनको काट रहा है तो बड़ी हाय हाय मचा रखी गुरुजी ने, बड़े तकलीफ में है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, गुरुजी आप भी क्या करते हैं, उतने बड़े खतरनाक शेर से तो आप डरे नहीं, जरा भी कराहे नहीं, और इतना सा कीड़ा आपको काट रहा है और आप करा रहे हैं। तो मालूम गुरुजी ने क्या कहा कि जब शेर आया था ना, तब मेरे साथ मेरा भगवान था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी, और अभी जब ये कीड़ा काट रहा है ना, तो तू मेरे साथ में है, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा आ गया समझ में, किसके साथ हम हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर भगवान को हमने अपने साथ रखा है तो निश्चिंत है, और अगर हम तो सोचते हैं कि ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज्यादा निश्चिंत रहेगी, नहीं, ये हमें निश्चिंता नहीं दे पाएंगे। निश्चिंतता तो हमारी श्रद्धा देगी, हमारी आस्था देगी, और वो जो भगवत्ता के प्रति, वो जो वितरागता के प्रति श्रद्धा है, वो हमारे जीवन को निश्चिंतता देगी। हमें अगर अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाना है, हमारे अपने जीवन में हमें निश्चिंतता लानी है, हमें इस संसार की उलझनों के बीच भी साम्य भाव रख करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो ये श्रद्धा ही है जो हमारे लिए इन सब चीजों में मदद करती है। और इतना ही नहीं, अगर कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो हमारी श्रद्धा हमें उस विपत्ति में धैर्य बंधाती है। वर्तमान में व्यक्ति को शायद यही सब चीजें जरूरी हैं, वो निराश ना हो इसलिए उसके लिए सकारात्मक सोच चाहिए, वो कहीं उलझने लगे तो उसे सुलझाने वाला कोई चाहिए, वो अगर कहीं बेसहारा हो जाए तो उसे सहारा चाहिए, और अगर कोई उस पर विपत्ति आए तो उसे धैर्य बंधाने वाला होना चाहिए। जीवन में और क्या चाहिए व्यक्ति को, ये सब चीजें एक साथ अगर कोई दे सकता है तो वो हमें श्रद्धा दे सकती है, भक्ति दे सकती है, हमारी अपनी आस्था दे सकती है। इतनी महत्वपूर्ण है ये श्रद्धा और भक्ति। हम सोचते हैं कि शायद बहुत पढ़ लिखने से, बहुत ज्ञानवान होने से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, तो भैया अकेले भौतिक ज्ञान से, अकेले लौकिक ज्ञान से, या थोड़े पढ़ लिखने से हमारा जीवन अच्छा बन जाए, ये तय नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाए, और सचमुच हमारे मन में उस श्रद्धा और भक्ति के चलते वीतरागता का भाव अगर उत्पन्न हो जाए, तो वो वीतराग भाव हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने में बहुत मदद करेगा। एक और छोटी सी घटना, और हम आज अपने भीतर झांक करके देखेंगे कि क्या सचमुच हमारे जीवन में इतनी ही श्रद्धा और आस्था है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस श्रद्धा और आस्था को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वो बहुत निर्मल चित्त से, बहुत सहज भाव से, और भगवान की उपस्थिति को महसूस करे, वो अपने भीतर की भगवत्ता के प्रति रुचिवान हो, आत्मा के प्रति रुचि हो और अच्छी संगति हो। यही तो श्रद्धा हमें देती है, हमें आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करा देती है, और श्रद्धा के चलते हम अपने पूज्य पुरुषों के प्रति उनके निकट पहुंच करके उनकी निकटता महसूस करते हैं, वही हमारे लिए एक अच्छी संगति बनती है, और ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकती हैं। एक व्यक्ति
भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, बहुत भक्ति रखता था, और उसने महसूस भी किया कि भगवान उसके साथ है। और इसके लिए उसने कई बार अपने जीवन में प्रत्यक्ष भी देखा कि जब वो कभी नदी के किनारे रेत में जाता था तो कई बार उसने महसूस किया कि वो अकेला होने के बावजूद भी रेत में दो जोड़ी पैर बने हुए दिखाई पड़ते थे। एक तो एक जोड़ी पैर तो उसके और एक जोड़ी और किसी के, और उसे लगता था कि मेरा भगवान मेरे साथ है, ये उसी के पैरों के निशान है। इतनी निकटता का एहसास। कई लोगों को होता है ऐसी निकटता का एहसास किन के प्रति, जिनसे बहुत मोह होता है, और फिर जब वो नहीं रहते हैं या कि उनका जीवन ही पूरा हो चुका है तब कई लोग आकर के सुनाते हैं कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी सामने ही सामने तो हैं। हमें जब कमरे में अकेले रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि हमारी दादी तो नहीं रही लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठी दिखाई पड़ती। ऐसे वो तो मोह के वशीभूत है। और अगर ऐसी ही श्रद्धा हमारे भीतर हो भगवान के प्रति, उस वितरागता के प्रति, तो क्या ऐसी ही अनुभूति